जाओ
विजय भैया,
जल्दी से अस्पताल ले जाओ।
क्या हुआ विजय भैया? क्विक,
पता नहीं क्या पनौती है इस खान में, रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है।
राम सिंह, ये धन्ना कैसा आदमी है?
अरे बड़ा बदमाश है साहब, विजय की इसकी बहुत दुश्मनी है।
क्यों,
क्या हुआ साहब?
कुछ नहीं,
जख्म बहुत गहरा है, अंदर सब कोयला वेला घुस गया है, इसे साफ करने में बहुत तकलीफ होगी। मैं तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देती हूँ।
इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, आप यूं पट्टी बांध दीजिए।
देखो तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली
कोई
है।
कोई बात नहीं।
Why don't you understand?
Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it.
Okay.
साहिब।
सॉरी दादा। दाल में और कभी लेमन के साथ खाइए तुमने, एक अलग ही मजा है, खट्टा मीठा। आज आजमा ही लो।
इंजीनियर साहब आप जानते हैं मैं कौन हूं?
हाँ हाँ जानता हूं तुम यहां के बहुत बड़े दादा हो। ना एक बात बताओ, इस दादागिरी से तुम्हें क्या मिलता है? दूसरे वर्कर्स से मुझे पता चला है कि तुम उन्हें परेशान करते हो, पहुंच जमाते हो उन पर, जबरदस्ती उनसे पैसे छीनते हो। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। आइंदा अगर मैंने तुम्हें कभी गड़बड़ करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम सीधे हो जाओगे। हेलो, ठंडा पियो। कौन बोल रहे हैं?
साहब माफ कर देना। कैसे हो विजय, पैर कुछ बेहतर हुआ?
मुझे लगता है अब तक तो ठीक हो गया होगा।
वेरी गुड, चलो बैंडेज खोल के देखते हैं। लाओ। वैसे तुम लोगों का काम तो सचमुच जान जोखिम का है, तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ कितने दिन से हो?
याद नहीं डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से मैंने दिन गिनने छोड़ दिए हैं। कौन ये हिसाब रखे? बचा सवाल कि मैं कहां का हूं, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कहीं के नहीं होते।
मतलब ये है कि अपने बारे में बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता।
क्या बात करूं, कुछ बताने जैसा है ही नहीं, बस एक बेकार सी जिंदगी है चल रही है।
एक बात कहूं तुमसे, वजह तो नहीं जानती लेकिन इतना जरूर देख सकती हूँ, न जाने क्यों तुम अपने आप से बहुत नाराज हो।
ये कैसे देख लिया आपने?
उस दिन तुमने बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लिया, बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे तुम जानबूझकर इतनी मुश्किल का सामना करना चाहते हो। ये जो कोयले के खान में नौकरी करने आए हो, कौन जाने इसके भी यही वजह हो।
आप यहाँ क्यों आई हैं? आपसे पहले तो कोई लेडी डॉक्टर यहाँ नहीं आई। आप लड़की हैं, अकेली हैं और ऐसी जगह, आपके आने के पीछे भी तो कोई वजह है।
हाँ है। इसके भी कोई वजह है। एक दिन जब पिताजी खेत से वापस आए, बारिश में बुरी तरह भीगे हुए थे, बुखार था उन्हें, रात बढ़ते बढ़ते तबीयत और बिगड़ गई, लेकिन मेरे गांव से मिलो कोसों तक ना कोई हॉस्पिटल ना कोई डॉक्टर था, क्या बेबसी की रात थी वो बता नहीं सकते। मैं छोटी थी लेकिन रात भर पिताजी के सिराने बैठकर उन्हें तिल तिल मरते हुए देखती रही। सुबह होते होते वो मर गए। रिश्तेदारों ने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बन गई इसी उम्मीद के साथ कि डॉक्टर बनने के बाद किसी ऐसे गांव, किसी ऐसी जगह जाके इलाज करूंगी जहां एक डॉक्टर की उतनी जरूरत है जितनी उस रात मेरे गांव में थी।
कितनी अजीब बात है। सोचता हूं एक तरफ आप हैं जो जिंदगी से लड़ रही हैं, एक तरफ मैं हूं जो जिंदगी से भाग रहा हूं। चलो डॉक्टर साहब, पैर तो ठीक हो गया है, अब शायद फिर आने की जरूरत ही ना हो।
हाँ पैर तो ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर साहब,
मेरा नाम सुधा है।
इस तरह शोर मचाने से, उधम करने से कुछ नहीं मिलेगा।
मगर हमें अपना अधिकार चाहिए।
अधिकार हंगामे करने से नहीं मिलता, तुम्हें मालिकों से बात करनी चाहिए।
हमारी तरफ से आप बात क्यों नहीं करते रवि बाबू?
हाँ ठीक है, हमारी तरफ से आप बात कीजिए।
मैं एक शर्त पर आप लोगों के लिए बात करने के लिए तैयार हूं। जब मैं अंदर जाऊं ना यहां कोई शोर हो, ना हाय हाय के नारे लगाए जाएं और कोई भी आदमी आवाज नहीं करे।
ठीक है, हम वादा करते हैं।
ओके, मैं आई कम इन सर।
आइए मिस्टर रवि मल्होत्रा, तो अब आप यहां मजदूरों के लीडर बन गए।
नहीं साहब, मैं क्या लीडर बनूंगा। हाँ उनकी जो जायज मांगे हैं वो आपके पास लेकर आया हूं।
उनकी मांगे जायज है या नाजायज ये फैसला करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। और हम उनकी मांगों को जायज नहीं समझते।
क्यों नहीं समझते? अगर दिन भर इन काली अंधेरी खानों में काम करने वाला मजदूर आपसे सिर्फ इतना मांगता है कि शाम को उसके घर में रोटी बन सके, तो क्या यह मांग नाजायज है? अगर अपनी जान खतरे में डालकर आपको करोड़ों का मुनाफा देने वाला मजदूर इतनी बड़ी दौलत से अपना एक चुटकी भर हिस्सा मांगता है, तो क्या यह मांग नाजायज है?
अपना लेक्चर अपने पास रखो, तुम अभी बच्चे हो, इनके वक्तों को जितना दिया जाए उतनी मांग पड़ती है। मैं इन्हें एक महीने का बोनस दे रहा हूं, क्या यह कम है?
जी हाँ यह कम है, क्योंकि एक महीने का बोनस देकर आप तीन महीने के बोनस पर साइन करवा रहे हैं।
तो कौन से हाथ टूट जाएंगे उनके एक रसीद पर अंगूठा लगाने से? इनका मतलब तो सिर्फ परेशान करने से है। मैं इन कमीनों को अच्छी तरह से जानता हूं।
आप इन कमीनों को जानते हैं? आप जानते हैं कि एक मजदूर किन हालात और किन मुसीबतों में जिंदा रहता है? आप जानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एक मजदूर का बाल बाल कर से बंधा होता है? आप जानते हैं कि उसकी बीवी बच्चे किस गरीबी से जिंदगी गुजारते हैं? आज तक कभी उनकी बस्ती में कदम रखकर देखा है आपने? पुरी साहब, आप इस बस्ती के आदमी, औरतों और बच्चों को नहीं जानते। आप जानते हैं तो अपने बैंक के रुपए आना और पाई को जानते हैं।
जानते हो किससे बात कर रहे हो?
जानता हूं, यह भी जानता हूं कि क्या बात कर रहा हूं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन एक दो टकों की नौकरी के लिए सच्चाई का साथ छोड़ने वाले कोई और होंगे, मैं नहीं हूं पुरी साहब।
इस बकवास से कुछ नहीं होगा। बोनस सिर्फ एक महीने का मिलेगा और यह मेरा फैसला है।
बोनस तो तीन महीने का ही मिलेगा और वह आप किस तरह देंगे यह फैसला आप खुद ही कर लीजिए।
मुझे मजदूरों की मांगे मंजूर हैं, उन्हें तीन महीने का बोनस दिया जाएगा।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सर ये क्या बात हुई? मैं तो समझता था कि आप इस बदतमीज को नौकरी से निकाल देंगे, मगर आप
सक्सेना, जब रवि यहां आया था तो मजदूरों से चुप रहने का वादा लेकर आया था, और मैं बाहर इसलिए गया था कि कोई कदम उठाने से पहले ये देख लूं कि रवि का इन मजदूरों पर कितना असर है। मैंने उन्हें उकसाया भी लेकिन वो चुप रहे। और जो मजदूर इसके एक बार कहने से अपने होंठों पर ताला लगा सकते हैं, वो इसके निकाले जाने पर हमारी कोयले की कानों पर ताला लगा देंगे। सो वेट फॉर सम टाइम, हम रवि को निकालेंगे जरूर, लेकिन वक्त आने पर।
कुछ और बढ़े नशा कुछ और चढ़े, दुख वाला ध्यान कोई आज हमें आए ना।
दुख जो आए तो क्या, मन सताए तो क्या, आदमी को चाहिए कि कभी घबराए ना।
टूटने वाला है दम, खाए जाता है ये गम, बने दुल्हन मेरी बिटिया रानी।
वर्कर्स जो खुशियां मना रहे हैं, सोच भी नहीं सकते कि वो कितने बड़े खतरे के साए में जिंदा है। विजय, वो नहीं जानते कि क्या हो सकता है।
जानते हैं, वो जानते हैं इंजीनियर साहब। सेठ धनराजपुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है।
लेकिन मैं जिस दिन की बात कर रहा हूं विजय, अगर वो दिन कभी आ गया तो माइन में काम करने वाले किसी आदमी को कफन भी नसीब नहीं होगा।
क्या मतलब?
एक मिनट, आओ विजय, यह है वो माइन जहां हम लोग काम कर रहे हैं। ये टनल 1, 2, 3 ठीक है, सेफ है, नो प्रॉब्लम। यह है टनल नंबर 4। हम लोग काम करते हुए, कोयला निकालते हुए इस तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पानी है। टनल नंबर 4 और पानी के बीच का फासला कम होते जा रहा है और खतरा बढ़ते जा रहा है। जरा सोचो, अगर पानी इस माइन में घुस जाए तो क्या होगा? एक शिफ्ट में 350 आदमी काम करते हैं। यह माइन उन सब के लिए एक बहुत बड़ी पानी की कब्र बन जाएगी। एक भी आदमी नहीं बचेगा, एक आदमी नहीं।
इंजीनियर साहब, जिस दिन आप ये समझें कि अब ये सुरंग खतरे की हदों में जा रही है, आप मुझसे कहिएगा। मैं खामोश जरूर रहता हूं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब खामोशी एक जुर्म में पाप बन जाती है, और उसी वक्त में बात करता हूं। इंजीनियर साहब, आप मुझसे कहिएगा। अच्छा, मैं चलता हूं।
भाई पता नहीं सिर्फ हमें ही लग रहा है या तुमने भी फील किया, इस आदमी में एक अजीब बात है ना रवि?
हाँ नीता, इसे देखता हूं तो मुझे धनबाद की वो जलती हुई कान याद आ जाती है जिसमें बरसों से लाखों टन कोयला जल रहा है। इस आदमी के अंदर भी लाखों टन कोयला ना जाने कब से, ना जाने क्यों सुलग रहा है।
जानेमान, जल्दी से एक लस्सी बना दे खारे, समझ गए मुन्ना? बस बेटा लग जा काम पे।
मजे से
इतनी देर हो गई, तेरी लस्सी नहीं बनी अब तक, जल्दी कर।
अभी लाया साहब।
बेटा जल्दी कर, जल्दी
जल्दी लाया साहब, जल्दी।
आपने मुझे बुलाया इंजीनियर साहब?
हाँ विजय, जिन मशीनों के बारे में मैंने तुमसे कहा था वो तैयार हो गई हैं केजी वर्कशॉप में। ये ट्रक वहां जा रहा है, तुम साथ चले जाओ
ये।
और अपने सामने डिलीवरी ले लेना। तुम जाओगे तो मुझे इत्मीनान रहेगा। ये दे देना।
जी ठीक है।
वैसे तुम्हारी मदद के लिए मैंने एक और वर्कर ट्रक में बिठा दिया है। गो अहेड रोशन सिंह, इन्हें साथ ले जाओ।
अच्छा साहब।
ट्रक ड्राइवर जी, जरा गाड़ी रोकना।
क्यों, क्या बात है?
बाया बात क्या है? बात है,
ये क्या कर रहे हो?
अबे ओए आंख के अंधे लल्लू पंजू, देख मेरा चाबी निकाल रहा हूँ। क्या है लल्ला, हमको लगी है भूख और सामने के होटल से कुछ खाना वाना खा के आते हैं, तब तक गिरधारी लाल तुम्हें ही बैठे रहा।
मगर हम ड्यूटी पर हैं।
अबे ओए उल्लू के पट्टे, तेरी ड्यूटी मेरी भूख से बढ़ गया क्या है? बोल, बैठा रहे चुपचाप
साल,
बैठा रही बैग को
निकाल के ले गया।
ला भाई बना दे एक लस्सी जल्दी से। अरे मुन्ना ले आ पराठा जल्दी से।
अब जल्दी
क्या ये? वो अपने नए इंजीनियर मिस्टर रवि मल्होत्रा हैं। उन्होंने कुछ मशीनें मंगवाई हैं, उससे मजदूरों का काम भी आसान हो जाएगा और सेफ्टी भी ज्यादा है।
ट्वेल विद सेफ्टी। हम ये कान मजदूरों का काम आसान करने के लिए चला रहे हैं या अपने प्रॉफिट के लिए? और फिर जिन्हें यहाँ सेफ्टी नजर नहीं आती या अपनी जान खतरे में लगती है, वो काम छोड़कर जा सकता है। हम किसी मजदूर से जबरदस्ती काम तो नहीं करवाते। खैर, आइंदा इस किस्म के किसी फजूल खर्च की कोई जरूरत नहीं। कर लो।
यस सर।
और रवि मात्रा से भी कह देना।
राइट सर।
ज्ञान
आया साहब।
राम राम विजय भैया।
राम राम। ज्ञान एक चाय लाना।
आया साहब।
क्या हो ज्ञान, यहाँ पहले कौन आया था?
जी पहले आप आए थे।
तुमको पहले बुलाया किसने था?
जी आपने।
तो फिर चाय भी पहले यही आएगी?
जी चाय तो उन्होंने।
तुम्हारी गलती है, तुमने हमारा ऑर्डर पहले क्यों ले लिया? चाय यहाँ लगा रखो, चलो।
ज्ञान वो चाय मैंने मंगवाई थी और वो इस टेबल पर आएगी।
ज्ञान मुन्ना चाय यहाँ ला के रख दे।
चाय इसी टेबल पर आएगी ज्ञान।
खबरदार।
ठहरो ज्ञान, ये चाय तुम मुझे दे दो। नो प्रॉब्लम्स। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी थी, तुम लोग बुरा मत मानना। ये चाय मैं पी लेता हूँ। अच्छी चाय। और विजय वो जो पेपर्स तुम वर्कशॉप से लाने गए थे तुमने मुझे दिए नहीं, ऑफिस ले आना। थैंक यू ज्ञान।
की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप चल।
हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अंदर आ जाओ, मैं बैग लेके आती हूँ। चलो विजय। वैसे तो ये इसी इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगे, फिर भी इनसे कहिए पीना छोड़ दे और कल इन्हें दवाखाने भेज दीजिए।
जी अच्छा,
घबराओ नहीं।
नमस्ते।
इधर से तरह देखते।
मुझे तो इस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तुम कैसे देख लेते हो?
अंधेरे की आदत पड़ गई।
बस यही थोड़ी दूर तक अंधेरा है, अगले मोड़ से तो रोशनी है, है ना?
हाँ शायद अगले मोड़ पे तो रोशनी है।
चुका के चली ते पला लख बचाइए। इश्क और मुश्क कदे ना छुप दे, चाहे लख छुपाइए। अखा लख चुका के चलिए, पला लख बचाइए। इश्क है सच्चे रब दी रहमत, सच्चे रब दी रहमत। इश्क तो क्यों शर्माइए, चढ़ते चंद ने चढ़ के ना ओए चढ़।
मिस्टर जरा सुनना।
मैं?
हाँ हाँ
कहिए।
आप यहाँ रहते हैं?
जी हाँ, यही स्टेशन के पास रहता हूँ।
काम क्या करते हैं?
इंश्योरेंस करता हूँ। क्यों, क्या बात है?
घबराई नहीं, ये फोटो देखिए। इस आदमी को कहीं देखा है?
जी नहीं, ये तो इधर नहीं रहता। यहाँ पर जितने लोग भी काम करते हैं उन सबको पहचानता हूँ। हाँ, अगर खान की तरफ रहता हो तो मुझे पता नहीं।
थैंक यू,
यू आर वेलकम।
चलो भाई।
अरे ओ, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? लाइन में जाओ, लाइन में, वहाँ।
अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हड़बे,
यहाँ दर्द है, यहाँ।
देवी जी नमस्कार। जी कल से कुछ सर्दी हो गई है।
दवाई मिल जाएगी, लेकिन लाइन से आओ। तुमसे पहले बहुत से लोग कितने देर से खड़े हैं।
जी हमें कौन सी नबज दिखानी है आपको जो हम एक घंटा बाहर बैठे हैं? वो सामने पड़ी है सर्दी की गोलियाँ, आप दे दीजिए हमको, हम चले जाएंगे।
वो कोई भी दवाई हो उसी को मिलती है जो लाइन से आए। मैं इस वक्त एक मरीज को देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
बड़े ऊंचे सुर में बात कर रही हो मैम साहब, तुम अभी हमें जानते नहीं।
देखो मुझसे बदतमीजी नहीं करना।
मैम साहब औरत हो इसलिए हमने सुन लिया, लेकिन अगर इतनी बात तुम्हारे विजय ने कर दी होती तो उसके टुकड़े करके फेंक देता।
शट अप।
बेचारी बहुत रो रही थी अंदर जाकर।
क्यों बे, क्यों चिल्ला रहा है? कोयले के कान में आग लग गई क्या?
अरे गुरु, विजय तुम्हें ढूंढ रहा है, बहुत तौबा लगता है आज वो। हाँ
अच्छा,
देख लो ये विजय बहुत डेंजर आदमी, इससे बच के रहना।
बे साला, अपन भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था।
मुरली, मंगल को देखा?
मंगल को नहीं, मैंने तो कल से नहीं देखा।
विजय भैया, विजय भैया मैंने देखा है, मंगल को पूछ रहे ना।
हाँ।
काका के ढाबे में बैठा है।
कब देखा है?
अभी अभी, मैं निकल रहा था वो आकर बैठा। इधर ही आ रहा है गुरु।
अबे आने दे उल्लू के पट्टे का।
विजय,
यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो?
क्यों,
इसे कभी इस एरिया में देखा है?
ये आदमी इस एरिया में नहीं रहता।